پیش خدمت ہے جاسوسی دنیا ناول نمبر 109 بھیڑیے کی آواز پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3.
بائی ریکارڈر. پھر حمید اندھیرے میں راستہ بھول گیا تھا اور آدھے گھنٹے تک ادھر ادھر بھٹکتے رہنے کے بعد جائے رہائش تک پہنچ سکا تھا. سمدانی نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا. مجھے افسوس ہے پرنس کہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑی، اس نے کہا. اب آپ سچ مچ آرام کیجئے، بقیہ معاملات میں خود ہی دیکھوں گا. آخر ہمارے گھرانے پر اسی لیے تو آپ کے اجداد اتنا اعتماد کرتے تھے. حمید کراہتا ہوا آرام کرسی میں گر گیا. سمدانی نے تالی بجائی اور ایک ملازم اندر داخل ہوا. بلیک کافی تیز گرم، اس نے اس سے کہا، اور وہ تعظیمن جھک کر واپس چلا گیا. اس طرح آپ کی تھکن دور ہو جائے گی اور آپ آرام سے سو سکیں گے. سمدانی حمید کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا. چچا سمدانی، حمید اٹھ کر سیدھا بیٹھتا ہوا بولا، آخر زیغم کیسے سیدھا ہو گیا؟ وہی انجیکشن پرنس، اگر شیر کو دے دیا جائے تو اسے بکریاں سینگوں پر رکھ لیں گی. کس طرح؟ کنپٹی پر پڑنے والے ایک گھوسے نے اسے بے ہوش کیا تھا اور پھر انجیکشن دینے میں آسانی ہو گئی تھی. تم حیرت انگیز ثابت ہوئے ہو چچا سمدانی، آپ کے اجداد جوہر شناس تھے. او حمید پیٹ دبائے ہوئے اٹھا اور سمدانی سے بولا، میرا میدا، پتہ نہیں یہ لوگ کیا کھاتے کھلاتے ہیں، میں ابھی آیا. وہ اپنے بیڈ روم کی طرف چل پڑا. ایک بار پھر اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے فریدی سے رابطہ قائم کرنا چاہا لیکن کامیابی نہ ہوئی. جلاہٹ میں اس نے سوئچ آف کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. پہلی نظر میں کمرہ خالی دکھائی دیا لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے قد آدم گلدان کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہو. غالباً اس نے نیلے رنگ کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی. وہ گلدان کی طرف جھپٹا اور دردانہ اچھل پڑی، پھر فوراً ہی سنبھل کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. حمید نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائی. بوڑھے نے کافی پاٹ میں ایک کیپسول ڈالا تھا، دردانہ آہستہ سے بولی، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا تھا. کیا تم کافی پینے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے میرے ہی لیے کافی منگوائی تھی، میں ذرا باتھ روم تک گیا تھا. کیا تمہیں بوڑھے پر اعتماد ہے؟ ابا حضور کو تو ہے، پھر مجھے بھی ہونا چاہیے. وہ بے حد خطرناک آدمی ہے. اچھا میں دیکھ لوں گا، تم اب یہاں سے چلی جاؤ. پھر کہتی ہوں کافی میں ہاتھ نہ لگانا. اچھا اچھا اب تم جلدی سے چلی جاؤ. کوفناک باپ کوفناک بیتا، دونوں بکری بن گئے. مجھے بھی تشویش ہے، سمدانی کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے. اوہ، دردانہ نے طویل سانس لی اور مسکرا کر بولی، اب میں مطمئن ہوں، جا رہی ہوں. وہ چلی گئی. حمید اس میز کی طرف متوجہ ہوا جس پر کافی پاٹ اور دو تین کپ رکھے ہوئے تھے. اس نے ایک کپ میں کافی انڈیلی اور اسے قد آدم گلدان میں الٹ دیا، تھوڑی سی کپ میں باقی رہنے دی اور کپ کو دوبارہ کافی پاٹ کے قریب رکھ کر خود سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. جسم ڈھیلا چھوڑا اور آنکھیں بند کر لی. کچھ دیر بعد اس نے تین آوازیں سنی. سمدانی کہہ رہا تھا، اوہو پرنس کرسی ہی پر سو گئے، ایسا لاپرواہ اور جیوٹ کا جوان آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا. اس میں کیا شکر ہے؟ زیگم نے کہا، مجھے پھرتیلے پن پر حیرت ہوتی ہے. کوندے کی لپک ہے پرنس، لیکن تم بہت نالائق ہو. یہ سردار قاہر کی آواز تھی. مجھے ندامت ہے، زندگی بھر رہے گی، زیگم کی آواز آئی. حمید بدستور آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لیتا رہا. اب ہمیں یہاں سے فوراً چل دینا چاہیے، سمدانی بولا. لیکن پرنس، یہ زیگم کی آواز تھی. نہیں، انہیں مت چھیڑنا، بس روشنی بند کر کے نکل چلو، خود ہی جاگیں گے اور اپنے بیڈ روم میں چلے جائیں گے. سونے سے جگایا جانا بالکل پسند نہیں کرتے، خواہ کہیں سو گئے ہوں. پھر حمید نے سوئچ آف ہونے کی آواز سنی اور آنکھوں میں خفیف سدرا کر کے دیکھا. कमरा तारिक था, उसके बाद कोई आवाज ना सुनाई दी। हमीद ने आंखें खोल दी लेकिन अपनी जगह से जुम्बश भी ना की। बहरहाल उसे तो उनका ताकुब करना था, इसलिए ज्यादा दूर अंदेशी को भी राह नहीं दी जा सकती थी। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि तेज किस्म की सरगोशी सुनाई दी। प्रिंस तुम कहाँ हो? मैं बेहोश पड़ा हूँ, हमीद ने भी सरगोशी में ही जवाब दिया। चुपचाप बाहर निकल आओ, दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। वो अंदाज से बाहर निकल आया। बरामदे में पहुंचकर उसने पैरों की चाप सुनी थी। यहाँ भी अंधेरा था और दुर्दाना उसके करीब खड़ी आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, तुमने तो कमाल कर दिया, बड़ी खूबसूरती से बेहोश हुए थे। वो लोग पुरानी बावली की तरफ गए हैं। पुरानी बावली तक मेरी रहनुमाई करो, हमीद बोला। यकीनन करूंगी, मैं डरपोक तो नहीं हूँ, वहाँ भेड़िया भी होगा खुदा की पनाह। जेगम ने कहा था कि वो उसका पालतू भेड़िया है। हाँ, कुछ लोग भेड़िये भी पालते हैं, ये बात नहीं है, वो अब तक कई लोगों की जाने ले चुका है। तुम खुद सोचो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा मामूजाद भाई इतना अजियत पसंद होगा। हमें जल्द अज जल्द उनका पीछा करना चाहिए, तुम बस दूर से बावली दिखाकर वापस आ जाना। ये नामुमकिन है, मैं भी चलूंगी, पूरे इंतजाम के साथ आई हूँ। मेरे थैले में चार्ज पिस्तौल और वाफर तादाद में कारतूस मौजूद हैं। बेबी कान, वहाँ गोलियाँ भी चल सकती हैं। पिस्तौल और कारतूस नुमाइश के लिए नहीं लाई, चलो जल्दी करो, मेरी स्पोर्ट कार बाहर मौजूद है। वो आम रास्ते से गए होंगे, मैं दूसरी तरफ से ले चलूंगी, ये और भी अच्छा होगा। कुछ दूर चलकर स्पोर्ट कार कच्चे रास्ते पर उतार दी गई। दुर्दाना खुद ही ड्राइव कर रही थी और हमीद सोच रहा था, काश वो सचमुच उसकी चचाजात बहन होती। ड्राइविंग के मामले में भी बड़ी निडर लड़की थी। अब मुझे महसूस हो रहा है कि जीगम बड़ा कमीना आदमी है और मामू जान को क्या कहूँ, लेकिन ये बुरी बात है कि जीगम ने भेड़िया पाल रखा है और ये मशहूर करा दिया है कि वो दादा जान वाले भेड़िये की रूह है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? देखो जगलर की टोपी से क्या बरामद होता है। पता नहीं बावली में क्या है जिसे महफूज रखने के लिए वहाँ एक भेड़िया जरूरी समझा गया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम ठीक कह रहे हो, वहाँ जरूर कुछ है। और वो बूढ़ा मर्दूद मेरी शादी कराने नहीं आया, बावली ही की कुछ बात मालूम होती है। शादी की बात ना करो, दुर्दाना गुर्राई, मोहब्बत की करूं? बिल्कुल खामोश बैठो। क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? मैं सारे मर्दों से नाराज हूँ, हमीद फिर ना बोला। गाड़ी कुछ देर बाद रुक गई और दुर्दाना ने हमीद से उतरने को कहा। वैसे उसके लहजे से हमीद ने अंदाजा कर लिया कि वो इसके इस तरह खामोश रह जाने पर किसी कदर नाराज है। तुम मुझे बावली तक पहुंचा कर वापस जाओगी, हमीद ने उससे कहा। बेवकूफी की बातें ना करो, तुम्हें वहाँ कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें भेड़िये से खौफ नहीं मालूम होता, तुम्हारी मौजूदगी में खौफ ना मालूम होगा। अच्छा अब खामोशी से चलो, दुर्दाना ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ घसीटते हुए कहा। बावली के करीब पहुंचकर वो फिर रुके थे। यहाँ दूर तक कद आदम झाड़ियों के सिलसिले फैले हुए थे और बावली भी उन्हीं के दरमियान कहीं पोशीदा थी। चारों तरफ हु का आलम था, जीगरों की झाई झाई के अलावा और किसी किस्म की आवाज नहीं सुनाई देती थी। दुर्दाना ने टॉर्च रोशन की और हमीद को अपने पीछे आने का इशारा करती हुई झाड़ियों में घुस पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद झाड़ियों के दरमियान ही उन्हें एक छोटी सी कार दिखाई दी जो खाली थी। ये जेगम की गाड़ी है, दुर्दाना ने आहिस्ता से कहा। मारो गोली, तुम आगे चलती रहो, हमीद शानों को जुम्बश देकर बोला। कुछ दूर चलकर अचानक वो फिर रुक गई और मुड़कर हमीद से बोली, भेड़िया कहाँ? मर चुका। ओहो, इसे मारा किसने? मेरी गन के छरे इसके पाँव में लगे होंगे, लेकिन ये बड़ी गोली, हो सकता है जेगम ही ने उसे खत्म कर दिया हो। एक अजनबी भी तो साथ है उसके, हो सकता है उसने बूढ़े समदानी पर हमला किया हो। उसे बूढ़ा समदानी ना कहो, जवान समदानी कहो, बहुत ताकतवर है। हाँ चलो आगे बढ़ो, अब तुम्हें आगे चलना चाहिए, मैं पीछे से रोशनी दिखाऊंगी। फ्रांस में औरतें आगे चलती हैं, मुझसे ये बेअदबी नहीं हो सकती। बातें ना बनाओ चलो, वो पीछे हटकर उसे आगे धकेलती हुई बोली। हमीद पगडंडी पर चलने लगा, उसकी चौड़ाई 2 फुट से ज्यादा नहीं थी और दोनों जानिब उनके सरों से ऊंची झाड़ियां थीं। दफतन हमीद ने जेब से वो स्प्रिंग निकाले जिन्हें नथनों में फिट कर लेने से दहाने की बनावट तब्दील हो जाती थी। बावली के बिल्कुल करीब पहुंचकर दुर्दाना ने होशियार रहने को कहा। वो बहुत बड़े कतर का कुआं था जिसकी जगत की ऊंचाई कम से कम 3 फुट जरूर रही होगी। 4 सीढ़ियां तय करके वो ऊपर पहुंचे। उन्हीं सीढ़ियों की सीध में नीचे जाने वाले जीने थे। शायद इसी दौरान में दुर्दाना की नज़र हमीद के चेहरे पर पड़ गई थी। ओहो ये क्या, वो चौंक पड़ी। क्या हुआ तुम्हारी शक्ल? फिक्र ना करो, मैं नहीं चाहता कि समदानी मुझे पहचान सके। जाहिर है कि वो मुझे इस मुहिम पर साथ नहीं लाना चाहता था, इसीलिए उसने काफी में बेहोशी का कैप्सूल डाला था। अब्बा हुजूर की हिदायत थी कि समदानी की मर्जी पर चलूं, जो कुछ कहे वही करूं। आखिर तुम में कितने कमालात हैं, इस तरह मुसलसल ऊपरी होंठ ऊपर उठाए रख कर गुफ्तगू करते रहना आसान काम तो नहीं है, और ये नाक भी तो ऊपर उठ गई है। दुर्दाना ने उसकी नाक की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि वो पीछे हटकर बोला, अभी नहीं बाद में। खैर अब मैं टॉर्च नहीं रोशन करूंगी, दीवार के सहारे आहिस्ता आहिस्ता उतरते चलो, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख लूंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते रहे। जीनों के दोनों जानिब छोटे छोटे दरीचों के सिलसिले नीचे तक चले गए थे। उनसे होशियार रहने के लिए खास तौर पर दुर्दाना ने हिदायत की थी। कुछ ही जीने तय किए थे कि दानी जाने वाले एक दरीचे में रोशनी दिखाई दी और दुर्दाना ने हमीद का शाना दबाकर रुक जाने का इशारा किया। जिन जीने पर वो खड़े हुए थे दरीचा उससे भी करीबन 2-2.5 फुट ऊंचा था और कमरे में पहुंचने का रास्ता भी यही था। हमीद आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ दरीचे के एक पहलू से जा लगा। खुद उसके पसे मंजर में तारीकी थी और कमरे की रोशनी इतनी महदूद थी कि अंदर से उसके देख लिए जाने का इम्कान नहीं था। उसने उन तीनों को देखा जो एक मोमबत्ती की रोशनी में बड़े गौर से सामने वाली दीवार का जायजा ले रहे थे। दुर्दाना उसकी पुष्ट पर लदी हुई कमरे में झांक रही थी। क्या मुसीबत है, दफतन समदानी की आवाज आई, अभी तक हम भेड़िया नहीं तलाश कर सके। हमीद ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो दीवार पर बने हुए एक पैटर्न का जायजा ले रहे हैं। ये फरिश्ते 2 फुट की ऊंचाई तक दीवार पर चारों तरफ बना हुआ था। मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें इस तरह तरतीब दी गई थीं कि गुल बूटे से मालूम होते थे। ओहो ये रहा, फिर से देख लो, पूरे पैटर्न में इस भेड़िए के अलावा कोई दूसरा भेड़िया मौजूद नहीं। समदानी ने उन दोनों को मुखातिब करके कहा और वो दोनों बाप बेटे एक बार फिर चारों तरफ घूम कर उसके बयान की तस्दीक कर आए। कोई दूसरा नहीं है, सरदार काहिर ने भराई हुई आवाज में कहा। अच्छा तो फिर काम शुरू कर दो, समदानी ने जेगम के शाने पर हाथ रख कर बड़े प्यार से कहा। हमीद गरम गरम सांसें अपने बाएं गाल पर महसूस कर रहा था और अब उसे कतन दिलचस्पी नहीं रही थी कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। बस वो एक गैर जानिबदार तमाशाई की तरह सब कुछ देखे जा रहा था। जीगम ने चर्मी थैले से कुछ औजार निकाले और भेड़िये की तस्वीर पर से प्लास्टर उधेड़ना शुरू कर दिया। जरा ही देर में उसने दीवार में खासा बड़ा घड़ा बना दिया था। दफतन समदानी हाथ उठाकर बोला, ठहर जाओ, और काहिर के हाथ से मोमबत्ती लेकर घड़े के करीब लाया। उसके बाद उसने दाहिना हाथ घड़े में डाला था और एक संदूकची निकाल ली थी। ओहो ओहो, दोनों की जबान से बयक वक्त निकला। इसे खोलिए इसे खोलिए, जीगम ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। नहीं, समदानी का लहजा बेहद सख्त था। अब तुम दोनों को इससे कोई सरोकार ना होना चाहिए। ये तो ज्यादती है समदानी भाई काहिर घिघियाया। जी हाँ जनाब, जीगम कांपती हुई आवाज में बोला। ठीक उसी वक्त छत को तारीकी से एक सियाफाम आदमी समदानी पर आ कूदा और उसके हाथ से संदूकची छीटता हुआ दूर जा खड़ा हुआ। हमीद ने तवील सांस ली। ये चौथा आदमी सरतापा सियापोश था। लिबास खाल की तरह पूरे जिस्म पर मंडा हुआ था। सिर्फ आंखों की जगह दो सुराख थे और चमकदार आंखें उनसे साफ नजर आ रही थीं। संदूकची जमीन पर डाल दो, समदानी ने गरज कर कहा। बकवास मत करो वरना हड्डियां तोड़ दूंगा, सियापोश बोला। हमीद की जान में मजीद जान आई, आवाज फरीदी ही की थी। समदानी ने फायर कर दिया, बस सियापोश ने कह कहा लगाया। उसके बाद समदानी ने बकिया पांच कारतूस भी खाली कर दिए थे, लेकिन सियापोश अब भी इस तरह खड़ा हकारत से हंस रहा था। अचानक काहिर और जीगम भूत भूत चीखते हुए उस दरीचे की तरफ भागे जिसकी दूसरी तरफ हमीद और दुर्दाना खड़े थे। हमीद ने मुक्के मार मार कर उन दोनों को फिर कमरे के वस्त में पहुंचा दिया। उधर समदानी सियापोश से लिपट पड़ा था, संदूकची उसके हाथ से गिर गई थी, लेकिन उन दोनों में इतनी जुरत नहीं थी कि उसे उठा लेते। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए बुरी तरह कांप रहे थे और उनकी खौफजदा चीखें कमरे में गूंज रही थीं। हमीद भी कमरे में कूद जाता लेकिन दुर्दाना ने उसकी कमर थाम ली। ये क्या कर रही हो, हमीद भुन्ना कर बोला। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। तुमने देखा नहीं कि छह गोलियां खाने के बाद भी वो समदानी से चिमटा हुआ है। मेरा बड़ा भाई है, मुझे जाने दो, हमीद ने कहा और नाक से स्प्रिंग निकाल कर जेब में डाल लिए। उसके बाद वो दुर्दाना समेत कमरे में कूद गया था। वो उसे बुरा भला ही कहती रह गई थी। प्रिंस समदानी पुरमुसरत लहजे में चीखा, मेरी मदद करो, मैं भूतों से चहल नहीं करता, हमीद ने लापरवाही से कहा और संदूकची फर्श से उठा ली। अच्छा इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी कुश्ती में मजा आ रहा है, मैं यहीं रुककर तमाशा देखना चाहता हूँ, दुर्दाना दोनों के करीब जा खड़ी हुई थी। भागो बेटी भूत, काहिर कांपता हुआ चीखा। प्रिंस भागो, मुझे भी निकाल ले चलो। भूत ही मालूम होता है, समदानी सियापोश से गुत्था हुआ बड़बड़ आया, पत्थर का है पत्थर। और फिर इस पथरीले भूत ने समदानी को सर से ऊंचा उठाकर फर्श पर पटक दिया। समदानी की चीख बड़ी कर्बनाक थी, उसके बाद वो नहीं उठ सका था। ब्रादरम भूत क्या ये मर गया, हमीद ने सियापोश से पूछा। पता नहीं, खुद देख लो, उसने जवाब में कहा और हमीद के हाथ से संदूकची छीन कर दरीचे से बाहर छलांग लगा दी। अजीब सा सन्नाटा कमरे की फिजा पर मुसल्लत था। भूत की रवानगी के बाद ही दोनों बाप बेटे एक दूसरे से अलग हो गए थे और खामोश खड़े गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। हमीद समदानी पर झुका हुआ था, वो बेहोश था। शायद दाहने बाजू की हड्डी टूट गई थी क्योंकि दाहना हाथ तेजी से मतवरम होता जा रहा था। अब वो सीधा खड़ा हुआ तो काहिर ने पूछा, क्या मर गए समदानी भाई, बेहोश हो गया है, बाजू की हड्डी टूट गई है, हमें यहाँ से निकाल ले चलिए प्रिंस, जितनी जल्दी मुमकिन हो, काहिर ने बड़ी लुजाजत से कहा। अचानक जीगम चौंक कर बोला, मेरा भेड़िया, तुम्हारा भेड़िया, तुमने तो उसे गोली मार दी थी। नहीं, जीगम बौखला कर बोला, हमने रास्ते में उसकी लाश देखी थी, दुर्दाना ने सख्त लहजे में कहा, मुझे नफरत हो गई है तुमसे, हम दोनों को माफ कर दो बेटी, काहिर ने हाथ जोड़ दिए। मुझे बताइए ये सब क्या है, ये हमारी कमीनगी की कहानी है बेटी, घर चलो मैं सब कुछ बता दूंगा। इतने में जीगम मेरा भेड़िया चीखता हुआ दरीचे की तरफ झपटा और बाहर कूद गया। ओ जहन्नम में जाए भेड़िया, काहिर बड़बड़ आया, प्रिंस खुदा के लिए यहाँ से चलो, वो संदूक की तुम्हारे बाप की मलकियत थी। क्या मतलब, दुर्दाना चूक पड़ी, घर चलो वहीं सब बता दूंगा। इतने में कई लोग दरीचे से अंदर कूद आए उनके जिस्मों पर रियासी पुलिस की वर्दियां थीं। ओहो वली खान, काहिर एक आदमी की तरफ हाथ उठाकर चहका, मैं खान के हुक्म से आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ, उसने हथकड़ियां निकालते हुए कहा। क्यों खान, तो बोल भी नहीं सकते। बहमदुल्ला वो इस वक्त कोतवाली में तशरीफ रखते हैं और सरदार बेगम को बर्खास्त करके मुझे पुलिस का सरबराह बनाया है। अल्लाह रहम, काहिर ने कहा और चकराकर गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। सिपाहियों ने काहिर और समदानी को उठाया। तशरीफ ले चलिए आप भी, वली खान ने हमीद और दुर्दाना से मुअद्दबाना कहा। दोनों खामोशी से बाहर आए। कुएं की जगत पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने एक फायर की आवाज सुनी। हमीद और वली खान आवाज की तरफ झपटे थे और फिर जब उस जगह पहुंचे जहां भेड़िये की लाश देखी तो सन्नाटे में आ गए। भेड़िये के करीब ही जेगम खून में नहाया हुआ तड़प रहा था। खुदकशी जिनाब, वली खान टॉर्च की रोशनी में उस पर झुकता हुआ बोला। रिवाल्वर उसके हाथ में मौजूद है, दाहिनी कनपुटी पर फायर किया था। जालिमों पर अल्लाह है। महल पहुंचकर हमीद अपने कमरे में तन्हा रह गया था। दफतन पहली बार उसे अपने ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। फरीदी उससे कह रहा था कि वो बहुत एहतियात से उसी जगह पहुंच जाए जहां उसने भेड़िये पर फायर किया था। एहतियात का मतलब यही हो सकता था कि वो छुपकर महल से निकले। हमीद ने उस हिस्से की लाइट ऑफ कर दी और सूटकेस उठाकर बाहर निकल आया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी कब्रिस्तान से गुजर रहा हो। बस वो अंदाजे से चला जा रहा था, वरना इस अंधेरे में ये पता चलना बेहद मुश्किल था कि उसने किस जगह से भेड़िये पर फायर किया था। अचानक किसी गाड़ी के हेडलैम्प की रोशनी की जद में आ गया। गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी। कुछ फासले पर वो रुक गई और इंडिकेटिंग लाइट के जरिया इशारा मिलने लगा कि इधर आ जाओ। ऐसे हालात में ये फरीदी का महसूस अंदाज था। हमीद गाड़ी की तरफ झपटा और अगली सीट का दरवाजा खोलकर फरीदी के बराबर बैठ गया। समदानी पिछली सीट पर पड़ा कराह रहा था। अचानक उसने कहना शुरू किया, मेरी नीयत बखैर थी, मैं इत्मादुद्दौला की अमानत उनके बेटे तक पहुंचा देता। फरीदी कुछ न बोला। कार तेजी से आगे बढ़ गई। उसके बोनट पर छोटी सी झंडी लहरा रही थी। गालिबन वो उसी झंडी का एजाज था कि किले के फाटक के पहरेदारों ने उन्हें ताजीम दी थी और गाड़ी फाटक से निकल गई थी। सुबह तक वो शहर पहुंच सके थे। इस बार सफर कार ही से हुआ था और फरीदी एक बूढ़े पुलिस ऑफिसर के मेकअप में था। हमीद का ख्याल था कि वो खान जफरयाब से इसी मेकअप में मिला होगा, तभी तो समदानी को उन लोगों की हिरासत से निकाल पाया। अपनी कोठी के करीब गाड़ी रोककर फरीदी ने हमीद से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने अपना पार्ट खुश उसलूबी से अंजाम दिया, अब जाओ आराम करो। वो उसे गाड़ी से उतारकर समदानी समेत कहीं और चला गया था। हमीद की दो रातें बर्बाद हुई थीं, लिहाजा लिबास तब्दील किए बगैर जो बिस्तर पर गिरा तो शाम ही की खबर ली। फिर जागा तो एक मुलाजिम छोटा सा वायर रिकॉर्डर थमाकर रफू चक्कर हो गया। वायर रिकॉर्डर फरीदी का था, जिसमें बसा औकात वो हमीद के लिए हिदायत रिकॉर्ड कर जाया करता था। हमीद ने उसका स्विच ऑन कर दिया। फरीदी की आवाज आई, हमीद मैं दो दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जाहिर है कि ये दो दिन तुम्हारे लिए बेहद सबर आजमा होंगे, इसलिए समदानी वाले केस की मुख्तसर रिपोर्ट छोड़े जा रहा हूँ। ये सुप्रिंटेंडेंट के दोस्त इक्तदारुद्दौला का एक निजी मामला था। ये हकीकत है कि इक्तदारुद्दौला का लड़का इफ्तिखारुद्दौला 5 साल की उम्र से पेरिस में मुकीम है और इस वक्त से आज तक यहाँ नहीं आया। इस खानदान की कहानी जो तुमने समदानी से सुनी है हर बार सही थी। खान दौरा और इक्तदार के बाप एतमादुद्दौला जड़वा भाई थे और उनके मसाजीन में सरदार काहिर और समदानी के बाप काबिल एतमाद समझे जाते थे। एतमादुद्दौला के बाप ने मरते वक्त उन दोनों को बुलाकर जवाहरात पर मुश्तमिल एक खजाने का अमीन बनाया। وہ ان جواہرات کو اعتماد الدولہ کے لیے مخصوص رکھنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی جائیداد میں سے اعتماد الدولہ کو کچھ بھی نہ ملتا. اس جائیداد کا بٹوارا کبھی نہیں ہوا تھا. وہ ہر دور میں سب سے بڑے بیٹے کی تحویل رہی تھی اور وہی خاندان کے بقیہ افراد کی کفالت کرتا تھا. بہرحال اس خزانے کا نصف نقشہ طاہر کے باپ کے سپرد کیا گیا اور آدھا نقشہ سمدانی کے باپ کو دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ اگر اعتماد الدولہ اسے قبول کرنے پر تیار نہ ہو تو وہ ان کے بعد ان کی اولاد کے سپرد کر دیا جائے. لیکن وہ دونوں مساجین بے ایمانی پر اتر آئے اور اعتماد الدولہ کے والد کے انتقال کے بعد وہ آدھے نقشے کے لیے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو گئے لیکن ان میں سے کسی کو کامیابی نہ ہوئی. سمدانی کا باپ مرتے وقت آدھا نقشہ اپنے بیٹے طاہر کے سپرد کرتے ہوئے وصیت کر گیا کہ وہ سمدانی سے دوسرا نصف حاصل کر کے پورا نقشہ اقتدار الدولت تک پہنچا دے. لیکن طاہر کی نیت بھی بدل گئی. اب طاہر اور سمدانی میں ٹھن گئی. ادھر طاہر جو خان ظفریاب کا سالہ بھی تھا اس کوشش میں لگ گیا کہ دردانہ کی شادی اقتدار الدولہ کے بیٹے کی بجائے اس کے بیٹے زیغم سے ہو. آخر اس نے خان ظفریاب کو قید کر کے یہ بات مشہور کرا دی کہ وہ سخت بیمار ہیں. گھر والوں تک کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ادھر زیغم نے باولی میں ایک بھیڑیا پالا کیونکہ ان کے پاس والے آدھے نقشے سے یہ مترشح ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے باولی ہی میں ہے. یہ بھیڑیا اس لیے پالا گیا تھا کہ سمدانی اور اس کے حواری ان کی لا علمی میں باولی میں داخل نہ ہو سکیں. ادھر طاہر کے باپ کا پیغام ملتے ہی اقتدار الدولہ نے سمدانی سے آدھے نقشے کا مطالبہ کیا. سمدانی نے اس سے لا علمی ظاہر کی. پھر بات اتنی بڑی کہ وہ اقتدار الدولہ کی ملازمت چھوڑ کر چلا گیا. ابھی حال ہی میں جب یہ بات میرے علم میں آئی تو میں نے سپرنٹینڈنٹ کو یہی مشورہ دیا جس پر تم عمل کر چکے ہو. اقتدار الدولہ نے سمدانی سے استدعا کی کہ وہ ان کے بیٹے کے لیے وہی روایتی فریضہ ادا کرے جو خود ان کے لیے ان کے باپ نے ادا کیا تھا. سمدانی کو منہ مانگی مراد ملی. اس طرح وہ خان دوران کے قلعے میں بآسانی داخل ہو سکتا. لیکن اگر اسے اس کا علم ہوتا کہ طاہر پوری طرح قلعے پر تسلط جما چکا ہے تو شاید وہ ادھر کا رخ بھی نہ کرتا. میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ خان ظفریاب بہت زیادہ بیمار ہیں. اگر ہم اس طرح وہاں نہ پہنچتے تو ان کی رہائی ناممکن ہوتی اور وہ موقع پا کر انہیں اس طرح ختم کر دیتے کہ طویل علالت کے بعد قدرتی موت کا گمان ہوتا. تمہیں ان حالات سے اس لیے لا علم رکھا گیا تھا کہ مختلف مواقع پر تمہاری حیرت صداقت پر مبنی ہو, ایکٹنگ نامعلوم ہو. سمدانی بے حد چالاک ہے. تقریر ختم ہو گئی اور حمید نے ریکارڈر کو آف کر کے سر کھجانا شروع کر دیا. طرح طرح کے منہ بن رہے تھے لیکن بیبی خان اس نے ٹھنڈی سانس لی اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف روانہ ہو گیا. اس کیس کے دوران وہ یہی تو کرتا رہا تھا تمام شدھ.
اس کے ساتھ ہی ناول نمبر 109 بھیڑیے کی آواز اپنے اختتام کو پہنچا. جاسوسی دنیا کے مزید ناول سننے کے لیے